मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 26 मई 2016 है और आज के इस afeis.com में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी क्रम में मित्रों, मैं स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं रोशन लाल ठाकुर, आप डोंडी लोहरा छत्तीसगढ़ से हैं, अशोक कुमार मीना, आप जयपुर राजस्थान से हैं, सत्य प्रकाश मथुरा उत्तर प्रदेश से हैं और रोहित प्रसाद शेखपुरा बिहार से हैं। रोशन, अशोक, सत्य प्रकाश और रोहित, आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज सूचना मेरे पास कुछ भी विशेष नहीं है, इसलिए मैं सीधे आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से पर। मैं अभी प्रतीक्षा कर रहा हूं आप लोगों से विषय की, कि आप लोग कुछ विषय सुझाएंगे जिन पर मैं लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत बातचीत कर सकूं। एक विषय मेरे पास समय प्रबंधन को लेकर आया है, तो मित्रों, समय प्रबंधन को लेकर के फिलहाल मैं लाइफ मैनेजमेंट में इसकी चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। उसके दो कारण हैं। पहली बात तो ये कि समय प्रबंधन पर मेरी दो किताबें हैं, स्टूडेंट्स के लिए मैंने अलग से उनके नजरिए से किताब लिखी है जिसका टाइटल है स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट। इसमें जो और शब्द है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये किताब हिंदी में है जो मैंने ओरिजिनली लिखी है, लेकिन इसका ट्रांसलेटेड वर्जन भी है इंग्लिश में जिसका शीर्षक है स्टूडेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। वो किताब आप लोग ले सकते हैं जिनको भी जरूरत हो। और जो स्टूडेंट थोड़े से हायर लेवल पर हैं, यानी कि जो कॉलेज गोइंग के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं या दो इसके बाद फिर दो तीन साल से सिविल सर्विस की तैयारी भी कर रहे हैं, यानी कि उनमें थोड़ी सी मेच्योरिटी आ गई है, ऐसे स्टूडेंट अगर चाहे तो उससे हायर लेवल की मेरी जो दूसरी किताब है वह है समय आपकी मुट्ठी में। वो थोड़ी सी मेच्योर बुक है, वो ज्यादा वाइड रेंज में बात करती है समय प्रबंधन को लेकर के, वो किताब वो ले सकते हैं। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो सिविल सर्विस क्रॉनिकल जो मैगजीन आती है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, अभी टाइम मैनेजमेंट को लेकर के मेरे आर्टिकल्स आ रहे हैं और ये जो टाइम मैनेजमेंट पर जो आर्टिकल्स आ रहे हैं ये विशेषकर सिविल सर्विस को स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं। तो मित्रों, इसीलिए चूंकि ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, इसीलिए मैं टाइम मैनेजमेंट वाले टॉपिक को लाइफ मैनेजमेंट में ले नहीं पा रहा हूं। लेकिन दो दिन पहले मेरे पास एक और विषय आया था, मैं आज उस विषय को उठाने जा रहा हूं फ्रेंड्स। और वह विषय कुछ इस तरीके का था कि हम अपनी क्षमताओं का अनुमान कैसे लगाएं, क्या हम आईएएस कर सकते हैं, मैं कैसे जानूं कि मैं इसे कर सकता हूं। इस तरह के तीन चार मेल्स थे जिसको आधार बना करके मैं आज उस विषय पर बात करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, देखिए, जो पहली बात है कि क्या मैं कर सकता हूं, ये बहुत ही, सच पूछिए तो, बहुत ही घुमावदार, बहुत ही गहरा और बहुत ही जटिल सवाल है। हालांकि सुनने में बहुत सीधा लगता है, पूछने में भी बड़ा सीधा सीधा लगता है, लेकिन सच पूछिए तो जब आप इसके उत्तर को टटोलेंगे, तलाश करेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, जब टटोलेंगे तब बहुत सी जटिलताएं आपके हाथ लगेंगी, बहुत सी गुत्थियां आपकी पकड़ में आएंगी। इसलिए स्ट्रेट तरीके से बात करने के लिहाज से तो मैं कह सकता हूं कि हां, क्यों नहीं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप सही सोच रहे हैं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो सोचेगा कि मैं नहीं कर सकता वो तो कर ही नहीं सकता है। ये बात अलग है कि कोई सोचे कि मैं कर सकता हूं और वह भी न कर सके, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर आप निगेटिव ही सोचते हैं तो निगेटिव तो होना ही होना है। मित्रों, मैं इसका स्ट्रेट आंसर नहीं देने जा रहा हूं, हालांकि ये जो टॉपिक है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन कैसे करें कि हम क्या कर सकते हैं, इससे जुड़ा हुआ है। और इसको लेकर के शुरुआत में ही मेरा जो पहले ऑडियो फॉर एक्सीलेंस आता था जिसमें मैंने फोर चैनल्स ऑफ एनर्जी की बड़े विस्तार के साथ बात की है और जिन्हों और जिन स्पेशल जिन ऑडियो फॉर एक्सीलेंस को आप लोगों की सराहना भी बहुत मिली है उसमें मैं इसके बारे में बातें कर चुका हूं। इसलिए यदि आप सब बहुत डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो ऑडियो फॉर एक्सीलेंस हैं उन्हें एक बार फिर से जाकर सुने, वो अभी bafeis.com पर अवेलेबल हैं। लेकिन मित्रों यहां मैं जरूर थोड़ी सी बातें बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, करना चाहूंगा कह लीजिए। देखिए अगर आप पूरे के पूरे नेचर को देखें, नेचर के बनावट को देखें या किसी भी चीज को देखें तो आप पाएंगे कि हर उस चीज में, चाहे वो कोई भी हो, पतली हो, मोटी हो, कमजोर हो, छोटी हो, बड़ी हो, आपको उसमें एक मिडिल लाइन मिलेगी। मिडिल लाइन कहने का मतलब है, चलिए हम बहुत स्ट्रेट लैंग्वेज में बात करें तो रीढ़ की हड्डी। हमारा शरीर है पूरा का पूरा, एक ये जो ढांचा हमारा शरीर का खड़ा है, इस कच का जो ढांचा तैयार है वो रीढ़ की हड्डी कहलाता है। आप मकान देखिए, उसकी नींव है, कमरे खड़े हैं, बीम है, पेड़ है, पेड़ में दुनिया भर की डालियां फैली हुई हैं लेकिन उसका पेड़ भी है। तो हर चीज पर को आप पाएंगे कि उसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है जो मोटा होता है, मोटा न भी हो तो जो सबसे मजबूत होता है। और ये कहना ज्यादा आधार होगा कि जो पूरे के पूरे उसके बोझ को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके सौंदर्य को, उसकी शक्ति को, उसकी ऊर्जा को धारण करता है, सारी चीजें इस पर टिकी हुई होती है। फैमिली स्ट्रक्चर को देख लीजिए, फैमिली स्ट्रक्चर में जो रीढ़ की हड्डी होती है वो जो जिसके कंधों पर हमारे घर की अर्थव्यवस्था का बोझ है उसको हम रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। हमारे देश का जो प्रशासन है उसकी रीढ़ की हड्डी कौन है? प्रधानमंत्री है, उनके बिना काम नहीं चल सकता। तो मित्रों हर चीज की एक रीढ़ की हड्डी होती है, याद रखिए। यहां तक कि साइकोलॉजिकल लेवल पर भी रीढ़ की हड्डियां होती हैं, आप उसको उस रूप में मत लीजिएगा। साइकोलॉजिकल लेवल पर रीढ़ की हड्डी का मतलब है कि जो हमारे मन में समय समय पर इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं मन करने लगता है या मन नहीं करने लगता है, या किसी चीज के प्रति आकर्षण पैदा होता है, किसी चीज के प्रति क्रोध का भाव पैदा होता है, ये जितने भी मनोभाव हमारे अंदर आते हैं इनके पीछे भी कोई ना कोई रीढ़ की हड्डी होती है। और ये रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारे थॉट्स, हमारे बेसिक थॉट्स किस तरीके के हैं, हमारे बेसिक थॉट्स के आधार पर ही फिर वो जो छोटी छोटी इच्छाएं और छोटे छोटे विचार हैं वो पैदा होते हैं। याद रखिए जो हमारे मूल विचार हैं वह उसकी आधार भूमि होती है, वो जमीन होती है जहां से ये सारी चीजें पनपते हैं। विचार कह लीजिए, कुछ सीमा तक संस्कार कह लीजिए, कुछ सीमा तक जीवन का मूल उद्देश्य कह लीजिए, वहीं से हमारे विचार पनपते हैं, पैदा होते हैं। आप इन सब बातों को आप आजमाकर देख सकते हैं क्योंकि ये तो जिंदगी की रोज घटने वाली घटनाएं हैं जो आप इनको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका मूल विचार है, मूल उद्देश्य है, राइट। अब आप देखेंगे कि आपके मन में अब दूसरी जितनी भी चीजें पैदा होंगी वो इसी के अनुकूल पैदा होंगी। आपका मन कर रहा है कि पिक्चर देखने जाना चाहिए, तो शायद इसलिए कर रहा हो क्योंकि अब आप पढ़ते पढ़ते ऊब गए हैं। और फिर जब आप पिक्चर देखने चले जाएंगे तो वहां भी आपके मन में एक तरह का अपराध बोध आएगा कि यार क्यों यहां फालतू के 3 घंटे बर्बाद कर दिए, इस बीच में कुछ पढ़ ही लिए होते। तो ये जो अपराध बोध का जो भाव पैदा हुआ इसके भी केंद्र में सिविल सर्विस की प्रिपरेशन है। तो जब आप अपने मनोभावों को वाच करेंगे तब पाएंगे कि अरे बाप रे, ये तो सारी चीजें किसी जैसे पेड़ से शाखाएं फैली हुई हैं, उस सारी शाखाएं पेड़ से जुड़ी हुई हैं। लगभग वही स्थिति आपको अपने विचारों की दिखेगी, राइट फ्रेंड्स। तो अब चलिए जब हम ये कहते हैं कि क्या मैं कर सकता हूं, मान लीजिए आप प्रश्न करते हैं कि क्या मैं कर सकता हूं, तो पहली बात तो यह कि आप उसके रीढ़ की हड्डी को टटोलने की कोशिश कीजिए कि ये जो थॉट आया है क्या मैं कर सकता हूं, मान लीजिए कि आईएएस कर सकता हूं, तो उसको टटोलिए कि ये थॉट आया कहां से है। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे की रीढ़ की हड्डी को हमने थोड़ी देर के लिए अपने रीढ़ की हड्डी बना लिया है, या दूसरे के शान शौकत को देखकर, उसकी प्रतिष्ठा को देखकर हमने उसे अपने शान शौकत और प्रतिष्ठा के लिए एक तरह से आकर्षण का केंद्र बना लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो अट्रैक्शन है ये बड़ा ऊपरी अट्रैक्शन है। अक्सर मैं ये बात इस बार बार लोगों को सतर्क करता हूं मित्रों कि जैसे अभी सिविल सर्विस के रिजल्ट्स निकले हैं और आपको अलग अलग तरह की स्टोरीज पढ़ने को मिली होंगी। मैंने खुद स्टोरीज पढ़ी हैं कि किसी के पिता ऑटो चलाते थे, उनका बेटा सिविल सर्विस में आ गया। कोई मजदूरी ही करता था, लड़का ही मजदूरी करता था, वो सिविल सर्विस में आ गया। प्रांजल के बारे में मैंने बताया ही था कि जो ब्लाइंड हैं वो अच्छी रैंक 700 समथिंग रैंक के साथ वो सेलेक्ट हो गई। इस तरह के बहुत से किस्से आपको सुनने को मिलेंगे, मिलते ही हैं। यहां तक कि आप इंटरप्रेन्योरशिप में चले जाइए, इंटरप्रेन्योरशिप में आप सुनेंगे कि वो कल तक तो एक तरह से सर्वेंट था, आज इतना बड़ा उद्योगपति बन गया। हमारे भोपाल में ही एक सागर गैरे हैं जो खाने पीने का सामान बेचते हैं, उनकी स्टोरी अभी भास्कर में छपी थी और इससे पहले भी मैंने आप लोगों से इनके बारे में बात की थी कि जो साइकिल में सूप बेचा करते थे, नेपाल से एक व्यक्ति आए थे और वो पहले मजदूरी करने लगे, झोपड़ियों में रहने लगे, फिर सरकार में डेली वेजेस पर काम करने लगे। इसके बाद सरकारी काम के लिए जाते थे, शाम को आने के बाद फिर सूप बना करके अपनी साइकिल में लाद करके उस सूप को कॉलोनीज में जाते थे और बेचते थे। तो वो नाम ही उनका पड़ गया था, साइकिल वाला सूप, साइकिल वाला सूप नाम ही पड़ गया था। और आज वो भोपाल के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए। और ये कहानी केवल 15 साल की कहानी है। आज उनके जगह जगह पर अलग अलग आउटलेट खुल गए हैं, फर्स्ट क्लास मकान, अच्छी कॉलोनी में फर्स्ट क्लास मकान में वो व्यक्ति रह रहा है, कहां पहले सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। तो इस तरह की कहानियां हम लोग सुनते हैं। तो याद रखिए, जो मैं यहां सतर्क करना चाह रहा हूं, देखिए सतर्क शब्द पर मैंने जोर दिया है, मैं जो आपको यहां सतर्क करना चाह रहा हूं वो ये करना चाह रहा हूं कि इस तरह की परिस्थितियों का होना सफल होने की गारंटी नहीं है। इसको आप अपने ऊपर मत अप्लाई कर लीजिए। इस तरह की जो सक्सेस स्टोरीज हैं, ये सक्सेस स्टोरी हमें केवल दो बातें इंडिकेट करती हैं, केवल दो बातें। नंबर एक, पॉसिबिलिटी, संभावनाएं, कि यदि उसमें संभावना है तो वह संभावना आप में भी है। बस दैट्स ऑल, जस्ट पॉसिबिलिटी, एक छोटा सा बिंदु, प्रकाश का एक छोटा सा बिंदु। लेकिन प्रकाश के इस छोटे बिंदु को आप बिल्कुल आलोक वलय मत मान लीजिए, प्रभा मंडल मत मान लीजिए, सूर्य का टुकड़ा मत मान लीजिए। वो तो एक छोटी सी किरण है। और आप जानते हैं कि अगर दावा, अगर आपको कितनी भी बड़ी अग्नि, प्रचंड अग्नि भी अगर आपको भड़कानी है, जलानी है, तो उसके लिए छोटी सी चिंगारी ही चाहिए, बहुत बड़े मसाल की जरूरत नहीं होती है। एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत ही प्रचंड अग्नि का रूप धारण कर लेती है, करती है, ऐसा ही होता है। तो अगर इस तरह की स्टोरीज हम सुन रहे हैं तो हमें ये बताते हैं कि निराश होने का कारण नहीं है, संभावनाएं हैं, बस दैट्स ऑल। इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वालिटी आप में है, क्योंकि आप भी गरीब हैं, आप भी ऑटो चलाते हैं, आप भी हैंडीकैप्ड हैं, आप भी गांव से हैं, आप ये सब चीजें आपकी योग्यताएं नहीं है, और साथ ही साथ ये अयोग्यताएं भी नहीं है, जो सबसे बड़ी बात। अब जो सेकंड इंडिकेशन है, पहला तो यह कि ये केवल पॉसिबिलिटी है, आपकी एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, दिस इज जस्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड में कि ये सब चीजें हिंड्रेंस नहीं है, ये बाधाएं नहीं है, हम बाधाएं मान लेते हैं। देखिए कुछ चीजों की तो बाधाएं बड़ी साफ तौर पर दिखाई देती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हैं, बहुत दुबले पतले मरियल से और बहुत ही एनर्जी आप में नहीं है, अब आप कहें कि मुझे तो मैरी कॉम बनना है, बॉक्सर बनना है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो साफ है और वो एबिलिटी आप में नहीं है। लेकिन इस तरह की सफलताएं बताती हैं कि पॉसिबिलिटी है। दूसरा जो इंडिकेशन है दोस्तों, वो है कि हिंड्रेंस नहीं है, बस बाधाएं नहीं है। जिनको आप अभी बाधाएं समझ रहे हैं वो बाधाएं नहीं है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो शक्ति का कारण भी बन जाए। तो मित्रों, ये मैंने थोड़ी सी बातें आपसे शेयर की हैं, इसको आधार बनाकर कि क्या मैं कर सकता हूं, कि प्लीज इसके बारे में थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से सोचिए, रीजन के साथ सोचिए, लॉजिक तरीके से सोचिए, तार्किक स्तर पर सोचिए, केवल भावनाओं के आवेश में आकर के मत सोचिए कि हाँ वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे की बात तो जानने की कोशिश कीजिए कि उसने किया कैसे है, उसने कितना त्याग तपस्या की है उसको भी तो जानने की कोशिश कीजिए, और फिर जो उसने किया है उसको अपने ऊपर अप्लाई कीजिए कि क्या उसने जो जो किया है मैं भी वो कर सकता हूं, तब फिर आपके सामने इसका उत्तर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आएगा आपकी चेतना में कि तुम कर सकते हो या तुम नहीं कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए और भी इस पर कुछ बातें होंगी तो उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते हैं AIR न्यूज पर। फ्रेंड्स, कल के AIR में दो तीन इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आज हम लोग का पूरा वक्त AIR न्यूज में निकल सकता है और निकालना भी चाहेंगे। पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर थी और जो पहली ही खबर थी वो थी फ्रेंड्स कि केंद्र सरकार ने पूंजीगत उत्पाद नीति की घोषणा की है। ये आर्थिक परिदृश्य का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत के संदर्भ में और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ग्लोबलाइजेशन के दौर में इम्पोर्टेंट है, मेक इन इंडिया को देखते हुए इम्पोर्टेंट है। भारत में पिछले कुछ सालों से हालांकि आर्थिक वृद्धि दर तो आप देख रहे हैं हम 7 से 8 तक का अचीव कर रहे हैं, लेकिन रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और चूंकि केंद्र सरकार के द्वारा घोषित की गई अपनी तरह की ये पहली नीति है इसलिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुल मिलाकर यह कि इस बार के सिविल सर्विस के लिहाज से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। और चूंकि ये सरकार की एक नीतिगत घोषणा हुई है तो डेफिनेटली ये नीतिगत घोषणा फिर कुछ आगे तक चलेगी, है ना। नीति ऐसा नहीं कि 2-2, 4-4, 6-6 महीने के लिए होती है, मौद्रिक नीति नहीं है जो 2-3 महीने के लिए होती है, ये एक लंबी नीति होती है। तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, है ना, कि सिविल सर्विस में किस तरह की प्रिपरेशन होगी और कैसे आपको इसे समझना चाहिए। जैसे बार बार मैं कहता हूं कि टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर कमांड बनाइए, उस पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, लेकिन सवाल यह कि उस पर कमांड बनाएं कैसे, अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करें, है ना। तो जब हम किसी सब्जेक्ट, बिल्कुल क्रूड सब्जेक्ट पे चले जाते हैं, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, सिद्धांत की तरह पढ़ते हैं, तो सिद्धांत तो याद हो जाते हैं लेकिन याद रखिए कि प्रैक्टिकली उस पर कमांड नहीं बन पाती। मैं यहां मित्रों आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, अभी मुझे अचानक वो उदाहरण याद आ गया और मैं समझता हूं कि वो आप लोगों के लिए यहां बहुत मौजू भी होगा। कल या परसों के अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी कि जो रुड़की IIT है उसने अपने यहां से कुछ स्टूडेंट को निकाला है, और वो भी 100 या 100-125 स्टूडेंट्स को, मतलब निकाल दिया है कि अब आप लोग इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, राइट। वो सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे हैं, सब्जेक्ट्स को समझ नहीं पा रहे हैं, 2-2 साल 3-3 साल फेल हो रहे हैं, कुछ इस तरह की अलग अलग बातें थी, और भी बहुत से लड़कों को उन्होंने इसी तरह की वार्निंग दी है। रुड़की विश्वविद्यालय ने, रुड़की कॉलेज ने, IIT कॉलेज ने वार्निंग दी है कि आप लोग भी अपना परफॉर्मेंस सुधारिए नहीं तो हमें आपको भी निकालना पड़ेगा। मैनेजमेंट का यह कहना था कि इन लड़कों को रखने से कोई फायदा नहीं है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कैपेसिटी खर्च हो रही है, और जो भी उनके जो रीजंस रहे, इस तरह की खबर मैंने पढ़ी है। ये अखबार की खबर है मित्रों, मैं मान करके चल रहा हूं कि कुछ ना कुछ तो सच होगा ही, राइट। चलिए अगर सच नहीं भी हो तो मान लीजिए किस तरह की घटना घटती है, हम उसके आधार पर इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक रुड़की आईआईटी हमारे देश के सर्वोत्तम IIT में से एक है। डेफिनेटली वहां जो लड़के जिनको एडमिशन मिला है, IIT में एडमिशन मिला है, उन्होंने इसका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है, एंट्रेंस एग्जाम, और इसका एंट्रेंस क्वालिफाई करना आसान बात नहीं है, एक कठिन काम है। उस कठिन काम को उन्होंने पूरा किया, और पूरा ही नहीं किया बल्कि जब तक आपकी एक रैंकिंग अच्छी नहीं आएगी तब तक आप IIT रुड़की में एडमिशन आपको नहीं मिल पाएगा। मतलब वहां जैसे IIT रुड़की है, कानपुर है, दिल्ली है, यहां के लिए आपको बहुत अच्छी रैंकिंग की जरूरत होती है, तो इनकी रैंकिंग भी अच्छी थी, राइट, कंपैरेटिवली अच्छी थी। अब सवाल यह होता है कि ये सब कुछ बेहतर होने के बावजूद वो वहां सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, और मतलब इस लेवल तक वो असफल हो रहे हैं कि मैनेजमेंट को उन्हें निकालने का निर्णय लेना पड़ रहा है। बस इसके अंतर को आप समझ लीजिए फ्रेंड्स, तो मैं समझता हूं कि सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के आप टेक्निक को समझ लेंगे और आपको भरोसा होने लगेगा कि सिविल सर्विस की तैयारी भी अब थोड़े से डिफरेंट तरीके से ही करनी चाहिए। उन्होंने एंट्रेंस जो एग्जाम क्वालिफाई किया बहुत ही प्रैक्टिस के आधार पर, ऑब्जेक्टिव टाइप के आधार पर, या जो भी है रट लिया, मेहनत कर ली, मतलब वहां हार्ड लेबर उन्होंने किया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हार्ड लेबर किया, बिना हार्ड लेबर के वहां तक नहीं पहुंचते। लेकिन अब जो रियल लेबर हो रहा है वो हार्ड लेबर नहीं हो रहा है, वो स्मार्ट लेबर हो रहा है, कह लिए स्मार्ट वर्क हो रहा है, आजकल ये शब्द बहुत चला हुआ है, मतलब एक अलग तरीके का काम। वो तो एक एंट्रेंस था जिसमें मान लिया गया कि हाँ आप इसके लायक हैं, लेकिन वो अपनी उस चीज को अब नए सांचे में नहीं ढाल सके, ये उनके साथ संकट हुआ। तो नए सांचे में ढालने का मतलब है कि आप में एक्सप्लेनेशन करने की ताकत आए, आप चीजों को एनालिसिस कर सकें, चीजों पर अपनी कमांड शो कर सकें, इनोवेशन ला सकें, कुछ ओरिजिनलिटी दिखा सकें, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकें। अब ये सारी चीजें यहां हो रही हैं, वहां वो चीजें नहीं थी, वहां तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आना था, वो भी एक पर्टिकुलर पैटर्न का पेपर था, मेहनत की वहां क्वालिफाई कर गए। तो दोस्तों सिविल सर्विस की तैयारी बिल्कुल यही, आप इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ जाइए, इकोनॉमिक्स के सारे सिद्धांत रट जाइए, लेकिन जब तक आप उसको अप्लाइड फॉर्म में नहीं लेंगे, एज इफ यू आर कि आप कोई पेपर प्रेजेंट करने जा रहे हैं, और ये जो पेपर आपने प्रेजेंट किया है ये अपने दिमाग से प्रिपेयर किया है और उसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं, और इस रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं कि सामने ऑडियंस बैठी हुई है और वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, और वो आपको इस पे जो आपने पेपर प्रेजेंट किया है इस पर आपसे क्वेश्चन करेंगे, और आप उन सभी क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए तैयार हैं, मतलब आपकी इस तरह की प्रिपरेशन है कि आप क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। तो मित्रों ये सिविल सर्विस की प्रिपरेशन है। जैसे अभी पूंजीगत उत्पाद नीति की खबर आपने रेडियो पर सुनी, राइट? सुनकर के तो लगेगा ठीक है हो गया, बस कोई खास बात नहीं है, लेकिन अब अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जैसा कि मुझे लगता है, तो फिर आपको इसकी प्रिपरेशन करने में आज लग जाना चाहिए। आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यार ये पूंजीगत उत्पाद क्या है, कैपिटल गुड्स क्या होती है, क्या इसकी कोई अलग डेफिनेशन है? अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मालूम है तो डेफिनेटली आपको पहले समझिए तो कि ये कैपिटल गुड्स है क्या। जब आप फिर जब समझने की कोशिश करेंगे तो आपको और भी थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा, बहुत सी चीजों को ऑटोमेटिक तरीके से आपको दोहराने का अवसर मिल जाएगा। आप जब गुड्स के तरीके देखेंगे तो आपको लगेगा कि दो तरह के गुड्स उसमें समझाए हैं, एक है कैपिटल गुड्स और दूसरा है कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स वो होता है जो चीजों के उत्पाद करने के लिए जिसकी जरूरत होती है, चीजों को बनाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप चॉकलेट खाते हैं, तो जो आपने चॉकलेट खरीदा ये कंज्यूमर गुड्स है, आपने खाया और खत्म हो गया। लेकिन जो चॉकलेट को बनाने वाली जो मशीन है, वो मशीन भी कहीं ना कहीं तो बनेगी, उस मशीन को बनाने की भी कोई ना कोई इंडस्ट्री होगी। तो जो कंज्यूमर गुड्स जिसके जरिए बनती हैं या सर्विसेज का जिसके जरिए उत्पादन होता है वो कैपिटल गुड्स है। तब आपको पता लगेगा कि अच्छा ये अंतर हुआ। जैसे मान लीजिए कि मैं एक कार खरीदता हूं, कार मैं यूज अपने यूज के लिए खरीद रहा हूं, तो वो कार मेरे लिए कंज्यूमर गुड्स हो गया। लेकिन आपने देखा है कि सड़कें बनाने वाले जो डंपर होते हैं वो भी गाड़ी है, लेकिन अगर वो डंपर खरीदता हूं तो वो सड़कें बनाने के काम आ रहा है, बिल्डिंग बनाने के काम आ रहा है, जमीन को समतल करने के काम आ रहा है, पुल बनाने के काम आ रहा है, तो वो एक तरीके से चीजों के उत्पाद में वो चीज मदद कर रही है, तो वो हो गया कैपिटल गुड्स। तो इस तरह से दोस्तों जो मशीनें होती हैं वो कैपिटल गुड्स होती हैं। जैसे भोपाल का जो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, आप देखिए हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बिजली उत्पादन के लिए जो चीजें जरूरत होती है उनकी मशीन को तैयार करने वाला संस्थान, उद्योग, तो वो कैपिटल गुड्स हो गया। तो मित्रों जब आप ये समझ जाएंगे कि ये कैपिटल गुड्स है और आपको ये भी पता लग गया कि ये कंज्यूमर गुड्स है, ज्यादातर मार्केट इसी के होते हैं। देखिए अगर आप फिर जब हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको कुछ और भी नॉलेज मिल जाएगी। कैपिटल गुड्स एक तो मशीनरी हो गई, लेकिन दो और चीजें हैं जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में मानी जाती हैं, उनको भी हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। जैसे लैंड, जमीन, उद्योग लगाने के लिए आपको जमीन चाहिए, तो जमीन भी कैपिटल गुड्स में आता है। इसके बाद लेबर, जो श्रम है, श्रम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी एक तरह से कैपिटल गुड्स में आता है। लेकिन आप लेबर को क्या उत्पाद करेंगे और जमीन एक बार ले लिया, ये सारी चीजें स्थिर होती हैं। तो जो कैपिटल गुड्स है उसको आप सीधे से यहां जो बात कही गई है और जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है उसको हम जोड़ करके देखेंगे कि एक ऐसी चीज जो कंज्यूमर गुड्स को पैदा करने के काम आए कैपिटल गुड्स कहलाती है। जब आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज कैपिटल गुड्स, तब आप देखेंगे कि बाकी चीज जो आप न्यूज में सुन रहे हैं या फिर आज आप को जो अखबारों में इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, और मैं एक पेपर क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं दैनिक भास्कर की, जिसमें इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर आप अखबार में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, मैं आज जो आपको पेस क्लिपिंग्स जो दैनिक भास्कर होगी मैं उसी की एक लाइन आपको पढ़ करके बता रहा हूं कि कैसे आपको चीजों पर कमांड बनानी है और अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर करना है। जैसे आया कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में कैपिटल गुड्स की हिस्सेदारी 12% से बढ़ाकर 20% करना, ये एक पॉइंट है जो उद्देश्य दिए गए हैं, माने उन उद्देश्यों पर मैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं जा रहा हूं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं केवल वो बता रहा हूं कि कैसे आपको अपनी समझ विकसित करनी चाहिए, सब्जेक्ट पर कैसे कमांड बनाया जाना चाहिए। अब आपने ये लाइन पढ़ी कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में विनिर्माण जिसको आप कहेंगे कैपिटल गुड्स की हिस्सेदारी 12% से बढ़ाकर 20% करना, जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां हैं टोटल अगर हम 100 उसको मान लें पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग को, तो अब आपको सोचना पड़ेगा तो यार ये मैन्युफैक्चरिंग जो गतिविधियां एक्टिविटीज और ये जो कैपिटल गुड्स की जो गतिविधियां हैं ये अंतर कैसे है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। देखिए अब मैं आपको इसको थोड़ा सा अंतर समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मशीनें तैयार कर दी गई, सड़क बनाने वाली मशीनें, मकान बनाने वाली मशीनें, क्रेन और ये सारी चीजें तैयार कर दी गई, तो मकान बनाने के लिए सारी चीजें जो चाहिए वो तैयार हो गई, लेकिन इसी से तो नहीं बनेगी, अब उसमें और दूसरी चीजों की जरूरत पड़ेगी। मकान बन रहा है तो मकान मैन्युफैक्चर हो रहा है, कपड़ा बन रहा है तो कपड़ा मैन्युफैक्चर हो रहा है, कपड़ा बनाने की मशीन क्या हो गई, वो कैपिटल गुड्स हो गई। अब जब कपड़ा बन रहा है तो वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हो गई, अब वो मैन्युफैक्चर हो रहा है तो मशीन का उत्पादन हो गया। तो यहां जो कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज हैं उसी का ही एक पार्ट है कैपिटल गुड्स का तैयार किया जाना, प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा एरिया है, उसको आप 100 मान लीजिए, उसमें से जो कैपिटल गुड्स है अभी तक उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 12% का है, रिमेनिंग जो 88% है विनिर्माण उद्योग में वो दूसरी दूसरी चीजों की एक्टिविटीज में है। तो इस कैपिटल गुड्स के कंट्रीब्यूशन को इसमें 12 से बढ़ाकर 20% करना, मतलब 8% इंक्रीज करना है। तो अब आपको पता लग जाएगा कि अच्छा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और कैपिटल गुड्स में ये फर्क है। फिर आपको पता लगेगा कि इस सेक्टर में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों को 84 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ करना। अब आपको ये देख सोचना पड़ेगा कि अगर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है प्रत्यक्ष रोजगार में कैसे वृद्धि होगी और अप्रत्यक्ष रोजगार में कैसे वृद्धि होगी। मजेदार बात है कि आपको एक और बात पॉइंट पढ़ने को मिलेगा जो इसके मुख्य उद्देश्य है, ये आपको मुख्य उद्देश्य आप समझ लीजिए कि आपको रटने भी पड़ेंगे और अगर एक बार आप समझ लेंगे तो फिर रटने के संकट से बच जाएंगे और वैसे भी रटने से बात बनती नहीं है। अब आप देखिए कि एक पॉइंट दिया है कि प्रत्यक्ष घरेलू रोजगार की संख्या को 14 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करना। हमारे यहां ये माना जाता है कि घरेलू रोजगार जो उद्योग है, जो लघु और मध्यम दर्जे के जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, लगभग 14 लाख के करीब है, 12 से 14 लाख का आंकड़ा आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें लगभग 1.25 करोड़ लोग लगे हुए हैं, घरेलू उद्योग ने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। इस 14 लाख को बढ़ाकर 50 लाख करना। अब आपको यहां ये सोचना चाहिए कि यार ये जो कैपिटल गुड्स है ये तो बड़ी बड़ी मशीनें और ये सारी चीजें बनाएंगे, तो इसमें लघु उद्योग के लिए क्या गुंजाइश होगी, घरेलू उद्योग के लिए क्या गुंजाइश हो गई। अब आपको सोचना होगा कि घरेलू उद्योग कैसे होगा, घरेलू उद्योगों को कैसे प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे मैं अब आपको एक छोटा सा उदाहरण चलिए मैं बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी जिसमें मैं नाम थोड़ा सा भूलू, जिसमें भास्करा राव हैं और जिन अपनी लड़की को पढ़ा करके जो आईएएस बनाती है, जो घर में काम करती है, लोगों के घर में जा करके काम करती है, उसमें आपने देखा होगा कि वो एक ऐसे आगरा की है वो, और जूते के कारखाने में जाती है ना। तो अब वो क्या करती है, जूते डब्बों में पैक करना, राइट। अब आप देखिए कि जो कैपिटल गुड्स का उत्पादन है, जूते बनाने की बड़ी बड़ी मशीनें अगर बनाई जा रही है तो वो कैपिटल गुड्स का उत्पादन हो गया, और उन मशीनों के जरिए जब जूते बनाए जा रहे हैं तो अब जूतों पर पॉलिश किया जाना है हाथ से तो वो घरेलू उद्योग में आप दे दीजिए, उनको डब्बों में भरना है पैक करना है तो आप घरेलू उद्योगों में दे दीजिए, उसमें लेस डालने का काम है तो वो आप घरेलू उद्योगों में दे दीजिए। तो ये छोटे 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 काम घरेलू उद्योग के रूप में आपके पनपने लगेंगे। तो इस तरीके से कि अगर कैपिटल गुड्स जो का उत्पादन होगा तो स्वाभाविक बात है कि वो तभी आप उत्पादन करेंगे जब कोई मशीन का की डिमांड होगी, जब मशीन की डिमांड होगी तो उस मशीन वो उद्योग भी लगाएगी, और जब बड़े उद्योग लगेंगे तो उससे जुड़े हुए छोटे छोटे उद्योगों को भी स्थान मिलेगा। तो मित्रों इस तरीके से आपको चीजों को जब आप समझेंगे तब जाकर बात बनेगी, और यहीं पर जरूरत होती है धैर्य की, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में की है कि ये टाइम मांगता है, इत्मीनान मांगता है, थोड़े से इत्मीनान के साथ इसके साथ समय लगाइए, देखिए कि कैसे चीजें आपके समझ में आ जाती हैं। और एक बार तो आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद फिर आपसे ये कभी समय की मांग नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो टॉपिक आपका बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। तो मित्रों उसकी जो डिटेल्स हैं वो आप लोग उसमें पढ़ लीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, और आगे भी इन पर अभी अब मुझे लगता है कि इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड में लेख और एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे, हम उस पर देखेंगे। आगे जो छोटी छोटी खबरें हैं, एक खबर है कि केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन जी ने शपथ ले ली है, आपको मालूम है वो वामपंथी दल के को विजय मिली है केरल के अभी चुनाव में। एक मित्रों जो एक इम्पॉर्टेंट खबर थी, हालांकि उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं क्योंकि वो रक्षा प्रमुखों की बैठक थी, कि जो एशियान कंट्रीज है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो संगठन है, लाओस में अभी लाओस की राजधानी में उनकी बैठक हुई थी, उन्होंने एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है, मैं समझता हूं कि बहुत इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, 10 देशों ने उसमें भाग लिया था, और उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो न्यूज में भी कवर किया गया था कि जो दक्षिण चीन सागर आप मैप पर उसको लोकेट कीजिए, चीन के दक्षिण में है इसीलिए दक्षिण चीन सागर है, और आपने देखा कि दक्षिण चीन सागर में लगातार चीन अपनी गतिविधियों को बढ़ाता चला जा रहा है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया सतर्क हो गई है, और अमेरिका तो सीधे सीधे काउंटर करने की सिचुएशन में भी अब खड़ा हो गया है, और शुरू से लोग इसका विरोध करते रहे हैं। तो अब जो घोषणा पत्र जारी किया है वो यह है कि जो नौवहन की जो स्वतंत्रता है, नेविगेशन की जो इंडिपेंडेंसी है वो इंटैक्ट होनी चाहिए, मतलब उस पर चीन को दखल करने का अधिकार नहीं है कि वो उस पर अधिकार कर ले दक्षिण चीन सागर पर। तो चीन जो लगातार उसमें अपनी प्रेजेंस बढ़ाता चला जा रहा है, इंटरफेयर करता चला जा रहा है, उसके खिलाफ 10 देशों ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। भारत भी नो डाउट इन्हीं के साथ है, क्योंकि भारत की सुरक्षा भी दक्षिण चीन सागर से काफी कुछ जुड़ी हुई है, तो इस लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 10 देश इकट्ठे चीन के विरोध में खड़े हैं, और ये भी देश वही है जो दक्षिण चीन सागर के आसपास में कहीं न कहीं मौजूद है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके दिमाग में दर्ज हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स अब अखबारों की क्लिपिंग्स पर, बहुत सी क्लिपिंग्स आज भी हैं और मैं क्लिपिंग्स की अब डिटेल्स पर नहीं जा रहा हूं, प्लीज आप लोग क्लिपिंग्स देख लेंगे। मैं अब सीधे आता हूं ईमेल पर। तो मित्रों बहुत दोस्तों ने ईमेल लिखे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबका बहुत बहुत आभार। इसमें हमारे स्टूडेंट रहे हैं वेंजुदा सेजुल कुमार, उनका मेल मिला है, और सेजुल कुमार इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो डेली ऑडियो के बारे में लोगों को जानकारियां दे रहे हैं और उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, नो डाउट आप एकेडमी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब कोई अच्छा काम करता है तो देर सवेर उस अच्छे काम के परिणाम भी अच्छे ही होते हैं, तो एकेडमी की ओर से मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो मित्रों कुछ और दोस्तों के नाम हैं, अवनीश कुमार रामपुर से, ओपी जाट अजमेर से, विशाल धनबाद झारखंड से, मोहिनी रावत लखनऊ से, पुष्पेंद्र कुमार जमालपुर बिहार से, विनोद राठी रोहतक हरियाणा से, प्रगति देवांशी त्रिपाठी इलाहाबाद से, संदीप कुमार लखनऊ से, और आशीष कुमार भागलपुर बिहार से। आप सब का भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही यह आज का डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है, आप सबके प्रति मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सबको अभिवादन भी, नमस्कार।